जी, चलो ना साथ। अंतरा अहाना को मनोहार करके मनाने में लगी थी। निशांत ने उसे बताया था कि अहाना नहीं आ रही थी और वो दौड़ते हुए घर चली आई थी। अपनी जीजी को मनाने पर अहाना तो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने इस बार भी इनकार कर दिया था। हम नहीं जाएंगे अंतरा, तुम जानती हो हमें रंग खेलना पसंद नहीं। अरे जीजी, इस बार खास तुम्हारे लिए बस गुलाल का इंतजाम किया है हमने, अंतरा ने फट से जवाब दिया। पर अहाना का जवाब अब भी नहीं बदला था। फिर भी हमें नहीं जाना, हम घर पर ही रहेंगे। अंतरा कुछ पल परेशान सी उसे देखती रही, फिर अचानक ही उसके खुराफाती दिमाग में एक शानदार शैतानी आइडिया आया और उसने नाराज़गी से मुंह बनाते हुए तुनकते हुए कहा, ठीक है तो मत जाओ, पर ये भी जान लो कि जीजू जा रहे हैं और आसपास की सब लड़कियां उनके लुक्स और पर्सनैलिटी पर मरती हैं। आज मौका मिला तो घेर लेंगी और जिनके साथ आपको होली खेलनी चाहिए थी उनके साथ वो गोपियाँ रास रचाएंगी। फिर न कहना कि हमने तुम्हें आगाह नहीं किया, और अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे शरीफ से पति को उन चालाक लोमड़ियों ने अगवा कर लिया, फिर शिकायत न लगाना कि उन्हें बचा कर न रख सके। वाह, क्या दाव चला था! अक्षय का नाम लेकर जो तीर छोड़ा उसने, वो सीधे निशाने पर लगा था। अब तक अपने फैसले पर अड़े अहाना के चेहरे के बदलते भाव बता रहे थे कि अब फैसला बदल सकता था, बस थोड़ी और कोशिश करने की ज़रूरत थी। देखो भाई, हमारा काम था आगाह करना, सो हमने कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारे वो, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमसे उम्मीद न रखना कि हम उन्हें बचाते फिरेंगे, क्योंकि हम तो ट्रेन में कहीं जाने वाली उस बात पर विश्वास करते हैं कि यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर जीजू को उन चतुर लोमड़ियों से बचाना है तो उनका सुरक्षा कवच बनकर साथ चलो। जब बीवी साथ होगी तो कोई गैर लड़की उनके आसपास भी नहीं फटकेगी, और लगे हाथ तुम भी रंग खेल लेना उनके साथ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और जो तुम साथ नहीं गई तो तुम्हारे और जीजू की पहली होली बेरंग रह जाएगी और जीजू किसी और के ही रंग में रंग जाएंगे। अंतरा उसे चेता कम और डरा ज़्यादा रही थी। उसकी बातों का असर भी हुआ था। अहाना के इरादे डगमगा गए थे और चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए थे। उन्हीं के सामने तो नहीं जाना, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। एक तो सुबह हमसे गड़बड़ हो गई, उसके बाद उन्हें इतना खाना खाना पड़ा और हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सके, कहीं नाराज़ ही ना हो गए हों। अहाना परेशान सी मन ही मन बड़बड़ाई और अंत में बहुत सोचने के बाद उसने चलने के लिए हामी भर ही दी थी। आखिर अपने पति को बिना सुरक्षा कवच के उन मीनगांवों के पास कैसे जाने देती जो बस एक मौके की तलाश में होंगी। कुछ देर बाद सभी पल्लवी के घर के सामने वाले पार्क में मौजूद थे। एंट्रेंस के पास ही एक पेड़ पर हैंगिंग झूला लगा था। एक तरफ पीले पर्दों से लगे पंडाल के नीचे रंग बिरंगे गुलाल थालियों में सजाकर रखे हुए थे। पार्क को रंग बिरंगे पर्दों से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। खाने के लिए मिठाइयों का भी इंतजाम किया गया था। अरेंजमेंट लाजवाब था। जो देख रहा था तारीफ करते नहीं थक रहा था। ये सब अंतरा की करामात थी। होली बड़ी पसंद थी उसे। अलग ही खुमार चढ़ता था होली का उस पर, और हर साल अपनी गैंग के साथ मिलकर वो कुछ खास ही इंतजाम करती थी, और इस बार उसने और भी स्पेशल इंतजाम किया था। आखिर उसके भैया भाभी और जीजी जीजू की पहली होली तो थी। अंतरा के बगल में चलते अन्वय ने चारों ओर निगाहें घुमाकर डेकोरेशन को देखा, फिर अंतरा के कान में फुसफुसाते हुए सवाल किया, ये सब तुमने किया है? और नहीं तो क्या तुमने किया है? अंतरा ने तुनकते हुए कहा और तीछी नजरों से उसे घूरने लगी। उसके बिगड़ते तेवर देखकर अन्वय ने बेचारगी से कहा, इतना भड़क क्यों रही हो यार? मैं तो यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि इंतजाम बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता था कि तुम में ये टैलेंट भी है। आई एम इम्प्रेस्ड। अपनी तारीफ सुनकर अंतरा का सारा गुस्सा एक पल में छू हो गया। चेहरे के भाव कोमल हो गए और प्यारी सी मुस्कान उसके लबों पर आ बिखरी। अपने गाल पर झूलती लटों को उसने अपनी उंगली में फंसाते हुए, कान के पीछे खोंसते हुए, खुद पर इतराते हुए बड़ी ही अदा से कहा, मैं तो पैदाइशी टैलेंटेड हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे और भी हिडन टैलेंट हैं जिनसे अभी तक तुम रूबरू ही नहीं हुए। कितनी काम की लड़की हूँ मैं, बस लोगों को मेरी कोई कद्र ही नहीं। उसने जयंती जी और निशांत को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। वही दोनों तो थे जो हमेशा उसे टोकते रहते थे, उसे अंडर एस्टिमेट करते थे। अन्वय उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सका। पल्लवी भी अपनी फैमिली संग वहां मौजूद थी। शुक्ला परिवार के वहां पहुंचते ही दोनों परिवार एक दूसरे से मिले, गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। फिर बड़े लोग अपने साथ के लोगों के पास चले गए और यंग पल्टन दूसरी तरफ चले आए, जहां कुछ लोग गुलाल से होली खेल रहे थे। भैया बस थोड़ा सा, अहाना ने आंखें बड़ी बड़ी करके दृशांत को देखते हुए रिक्वेस्ट की थी। वो उसे गुलाल लगा रहा था। दृशांत उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, फिर थोड़ा थोड़ा गुलाल उसके दोनों गालों पर लगा दिया था। अक्षय को लगाने आया तो उसने भी वही कहा था। सबकी निगाहें अहाना की ओर घूम गई और उसने झेपते हुए अपनी निगाहें झुका ली थीं। दृशांत ने अक्षय के माथे पर तिलक किया, अक्षय ने भी ये क्रम दोहराया और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगे थे। भाभी हमें भी इजाजत दीजिए। शैतान अन्वय दोनों हाथों में गुलाल लेकर अहाना के पास पहुंच गया था। ये देखकर अहाना घबरा गई थी। इतना सारा नहीं, हमें होली खेलना पसंद नहीं है। अच्छा, आपको थोड़ा सा लगा देते हैं, बाकी होली आपकी प्यारी बहन के साथ खेल लेंगे। अन्वय सौम्यता से मुस्कुराया और जरा सा गुलाल उसके गाल पर लगाने के बाद अपने गाल आगे कर दिए थे। अहाना ने भी उसके गालों पर थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाया और उसकी नाक को पकड़कर हल्के से खींच दिया था। अन्वय ने नाराजगी से गाल फुराए, अगले ही पल हंस पड़ा था तो अहाना भी हंसने लगी थी। ऐसा ही कुछ निशांत ने उसके साथ भी किया था। बाकी सबने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली विश की थी। फिर अन्वय निशांत और अंतरा के पीछे लग गया था, आखिर सुबह का बदला भी तो लेना था। अहाना उस भीड़ भाड़ से हटकर एक और चली आई थी। उसे डर था अगर वहां रही तो कोई ना कोई उसे जरूर रंग देगा। यहां सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हैं आप? अचानक आई अक्षय की आवाज सुनकर अहाना ने चौंकते हुए पलटकर देखा था तो अक्षय को अपने पास खड़ा पाया था। पल भर को हैरत से उसे देखते हुए सोचती रही थी कि वो यहाँ कब आया था। फिर वापस निगाहें सामने की ओर घुमाते हुए बोली थी, देख रही हूँ सबको होली खेलते हुए। अक्षय ने भी सामने की ओर नजरें घुमाई थी जहां कुछ लोग गुलाल से होली खेल रहे थे। फिर निगाहें एक बार फिर अहाना के चेहरे की ओर घूम गई थी। आपने सबके साथ होली खेली और हमें भूल गई, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई हमारे साथ। हक तो हमारा भी बनता है आपको अपने रंग में रंगने का और आपके कोमल नाजुक हथेलियों से अपने गालों को रंगवाने का।